नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नई दिल्ली में भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में अरब लीग की भूमिका की सराहना की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर समाज को बांटने और राज्य को कमजोर करने का आरोप लगाया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। देविका सिहाग थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स फाइनल में पहुंची और एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस महिला सिंगल्स खिताब जीता। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के लिए एक मजबूत और सार्वभौमिक नियम होना चाहिए। नई दिल्ली में भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक में डॉ जयशंकर ने बताया कि आतंकवाद के सभी रूपों से भारत और अरब देशों को समान रूप से खतरा है।
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म,
सीमा पार आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। आतंकवाद से प्रभावित देशों को आत्मरक्षा का अधिकार है। इस वैश्विक अभिशाप से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक अटल कानून होना चाहिए।
अनकॉम्प्रोमाइजिंग यूनिवर्सल नॉर्म।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अरब लीग के सभी देशों के बीच मजबूत ऐतिहासिक साझेदारी है। उन्होंने कहा कि ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब वैश्विक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी तथा जनसांख्यिकी जैसे कारक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति पर उन्होंने कहा कि बीते एक वर्ष में क्षेत्र का परिदृश्य तेजी से बदला है, इसका प्रभाव भारत और अरब देशों पर भी पड़ रहा है। उन्होंने गजा में शांति योजना को आगे बढ़ाने को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा प्राथमिकता बताया।
गजा की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय है और गजा संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना को आगे बढ़ाना आज एक सर्वमान्य प्राथमिकता है। विभिन्न देशों ने व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से शांति योजना पर नीतिगत घोषणाएं की हैं।
इंडिविजुअली और कलेक्टिवली।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब देशों के विदेश मंत्रियों, अरब लीग के महासचिव और अरब देशों के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भारत और अरब देशों के लोगों के बीच गहरे और ऐतिहासिक संबंधों पर बल दिया। श्री मोदी ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी क्षेत्रों में सहयोग को और प्रगाढ़ करने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के लोगों के प्रति भारत का निरंतर समर्थन दोहराया और गजा शांति योजना सहित शांति प्रयासों का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज दिल्ली में सूडान के विदेश मंत्री मुहिद्दीन सलीम अहमद इब्राहिम के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। दोनों देशों ने संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और प्रौद्योगिकी, खनन, सतत विकास और संस्कृति आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। लोकसभा में बजट पेश होने के बाद बजट की प्रति राज्यसभा में पेश की जाएगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। बजट तैयार करने से पहले वित्त मंत्री ने विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक बजट पूर्व परामर्श बैठकें की और वित्त मंत्री को सुझावों की संकलित रिपोर्ट सौंपी। एक रिपोर्ट।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट संसद में पेश करेंगी। उन्होंने 2019 में वित्त मंत्री का पदभार ग्रहण किया था। अपने बजट भाषण में वह अगले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास की रूपरेखा के साथ साथ सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगी। बजट तैयार करते समय केंद्र सरकार द्वारा युवाओं समेत आम नागरिकों से अलग अलग माध्यमों के जरिए सुझाव मांगे गए थे, जिसकी झलक केंद्रीय बजट 2026-27 में देखने को मिलेगी। बजट भाषण पूरा होने के बाद बजट से जुड़े सभी दस्तावेज यूनियन बजट मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री देश के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 30 कॉलेज छात्रों से भी संवाद करेंगी। बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ था, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री के सक्रिय सुशासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने 50वीं बैठक के सफल आयोजन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति की शुरुआत की थी। प्रगति ने प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के माध्यम से प्रमुख अवसंरचना, परियोजनाओं और जन शिकायतों की वास्तविक निगरानी तथा समाधान को सक्षम बनाकर शासन व्यवस्था में क्रांति पैदा की है। ये मंच सहकारी संघवाद का एक आदर्श उदाहरण है। विशेष श्रृंखला में आज उत्तराखंड से संबंधित परियोजनाओं पर एक रिपोर्ट।
उत्तराखंड एक रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिमालयी राज्य है और यहाँ सड़क, बिजली, दूरसंचार और तीर्थयात्रा से जुड़ी कई राष्ट्रीय महत्व की अहम परियोजनाएं चल रही हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में कुल 42 परियोजनाएं प्रगति मंच के तहत निगरानी में हैं। इनमें से 15 बड़ी परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रगति के माध्यम से समीक्षा की जा रही है, जिनकी लागत 1,22,000 करोड़ रुपए है। इनमें चार धाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं शामिल है। समीक्षा बैठकों के दौरान इन परियोजनाओं से जुड़ी कुल 69 समस्याएं सामने आई थी, जिनमें से 67 का समाधान कर लिया गया है। प्रगति तंत्र ने भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति और कानून व्यवस्था से संबंधित अड़चनों को दूर कर परियोजनाओं की गति को तेज करने में अहम भूमिका निभाई है। समस्याओं का समय पर समाधान होने से कनेक्टिविटी और बिजली परियोजनाओं से संबंधित काम में तेजी आई है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के प्रगति प्लेटफॉर्म की सराहना करते हुए इसे एक शक्तिशाली उपकरण बताया है, जो जन शिकायतों के समाधान और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। प्रगति एक नवोन्मेषी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफॉर्म है, जो सरकारी परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर समाज को बांटने और राज्य को कमजोर करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में एक रैली में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके बंगाल की सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाया है।
पूरे प्रदेश में अंदर अंदर झगड़ा करने के अलावे आपने कुछ नहीं किया और बंगाल की एकता को तहस नहस कर दिया है। मैं आज इस उत्तर बंग की भूमि पर कहकर जाता हूं कि ममता दीदी, आपका समय समाप्त हो गया है और अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विवेक आनंद जी और रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कल्पना का सोनार बांग्ला का निर्माण होने वाला है।
इससे पहले उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में श्री शाह ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध बंगाल की अस्मिता का विरोध है। राज्यसभा सांसद सुनित्रा पवार ने आज महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 62 वर्षीय सुनित्रा राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और उनके पति अजीत पवार का इस सप्ताह की शुरुआत में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उप मुख्यमंत्री बनने पर सुनित्रा पवार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि सुनित्रा पवार राज्य के लोगों के कल्याण के लिए निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगी और दिवंगत अजीत पवार के सपनों को साकार करेंगी। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाराष्ट्र के नाशिक जिले के त्रयंबकेश्वर में प्रशासनिक भवन और दर्शन कतार मंडप का लोकार्पण किया। इसका निर्माण पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत किया गया है। श्री शेखावत ने कहा कि आगामी कुंभ मेले को देखते हुए नाशिक और त्रयंबकेश्वर में बड़े पैमाने पर विकास कार्य चल रहे हैं और सभी परियोजनाएं शीघ्र पूरी हो जाएंगी। राम मंदिर से जुड़े सभी निर्माण कार्य 30 अप्रैल तक पूरे हो जाएंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि निर्माण एजेंसियों की एक छोटी टीम अगले 3 वर्ष तक मंदिर परिसर में रखरखाव कार्य के लिए तैनात रहेगी। उन्होंने बताया कि राम मंदिर के निर्माण पर अब तक लगभग 1,900 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
लगभग भुगतान जो हुआ है वह 1600 करोड़ का हो चुका है। 1800 करोड़ से 1900 करोड़ मोटा मोटी कुल मिलाकर के व्यय की संभावनाएं हैं, उसका ही आलेख लिया जा रहा है। इसमें टैक्स भी जुड़ा हुआ है जीएसटी का। तो इस कार्य को हम लोग प्राथमिकता पर फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल में पूर्ण करना चाहेंगे।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि 77वें गणतंत्र दिवस परेड का भव्य आयोजन भारत की विविधता में एकता का जीवंत प्रमाण है। नई दिल्ली में आज भारत पर्व के समापन समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि एक ऐसा अनुभव है जो देश की शाश्वत भावना को जीवंत करता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव का शुभारंभ किया। ये महोत्सव लोकल टू ग्लोबल अर्थात स्थानीय से वैश्विक आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य के साथ आयोजित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला दशकों से भारत की सांस्कृतिक आत्मा और कलात्मक उत्कृष्टता का जीवंत प्रतीक रहा है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ जिले में छारी ढांड को भारत के रामसर नेटवर्क से जोड़ा गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि दोनों आर्द्रभूमि सैकड़ों पक्षियों को आवास प्रदान करती हैं। ये क्षेत्र लुप्त प्राय पक्षियों के अलावा चिंकारा, भेड़िया, कैराकल, रेगिस्तानी बिल्लियों और लोमड़ियों जैसे वन्य जीवों का भी घर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एटा और कच्छ जिलों के लोगों को बधाई दी है। विदेश मंत्रालय ने तथाकथित एपस्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इसराइल यात्रा के बारे में शामिल ईमेल को खारिज कर दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इसराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में किए गए शीर्ष सभी संदर्भ एक दोषी अपराधी के निराधार और भ्रामक बातें हैं। थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में देविका सिहाग ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में देविका ने हुआंग यू सुन को हराया। फाइनल में देविका का सामना कल मलेशिया की गो जिन वेई से होगा। एलिना रायबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज एलिना ने आरेना सबालेंका को हराकर पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल कल कार्लोस अल्काराज और नोवाक जोकोविच के बीच खेला जाएगा। पांचवें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 272 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने पहले ओवर में 1 विकेट पर 17 रन बना लिए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में अरब लीग की भूमिका की सराहना की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर समाज को बांटने और राज्य को कमजोर करने का आरोप लगाया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता सुनीत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। देविका सिहाग थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।